संख्या 71, राजनैतिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। थाइपिंग आंदोलन की राजनैतिक आकृति को संक्षेप में थाइपिंग के इस नारे द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, छिंग शैतानों का सर्वनाश करना। चीनी क्षेत्र जो बहुत समय पहले उनके कब्जे में आ गए थे को पुनः स्थापित करना और फिर समता पर आधारित दिव्य राज की स्थापना करना। टू वाइप आउट द छिंग डेमोन्स, रिस्टोर द चाइनीज टेरिटरीज विच लॉन्ग एगो हैड फॉलन इनटू देयर हैंड्स एंड देन टू एस्टैब्लिश ए हिवनली किंगडम ऑफ इक्वालिटी। राजनीतिक क्षेत्र में थाइपिंग ने मांचू वंश को उखाड़ कर संपूर्ण चीन में दिव्य राज को कायम करने का प्रयत्न किया। विंसेंट सिंह का कहना है कि मांचू वंश का तख्ता पलटने की कोशिश में चीनी लोग जो मांचुओं के अधीन भयंकर दुख उठा चुके थे को शांति प्रदान करने की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थी। द अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द मांचूज टू वाज ए कंक्रीट एक्सप्रेशन ऑफ दियर डिजायर टू गिव पीस टू द चाइनीज हु हैड सफर्ड मेजरेबली अंडर द मांचूज। इसके अलावा थाइपिंग समर्थकों का यह मानना था कि छिंग शैतान पृथ्वी पर ईश्वर की इच्छा को लागू करने में बाधा डाल रहे थे, इसलिए इन शैतानों को उखाड़ फेंकना आवश्यक था ताकि दिव्य इच्छा का पालन हो सके। नानचिंग की थाइपिंग सरकार धर्मतांत्रिक थी और दिव्य राज्य में शासक आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही शक्तियों वाला था। दिव्य शासक के अधीन पूर्वी शासक और उसके अधीन चार अन्य शासक होते थे। यह पांच शासक संघीय और सैन्य अधिकारी भी होते थे तथा सर्वोच्च नेतृत्व को भी संभालते थे। थाइपिंग राज्य में बहुसंख्यक कृषक ही सैनिक होते थे। सैन्य संगठन सामाजिक और धार्मिक भी था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि थाइपिंग संगठन का राजनैतिक, सामाजिक और सैन्य ढांचा एक रूप था, यानी थाइपिंग, पादरीगण, राज्य और सेना एक थी। सरकार ने सभी हथकरघा उद्योगों और व्यापारों का राष्ट्रीयकरण करके अपने नियंत्रण में ले लिया ताकि सरकार और सेना की जरूरतों की आपूर्ति हमेशा बिना किसी रुकावट के होती रहे। थाइपिंग सरकार ने कई छोटी हथकरघा कार्यशालाओं को भी सार्वजनिक कारखानों में परिवर्तित कर दिया। सभी हथकरघा श्रमिकों का उनकी कार्यकुशलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया और फिर उन्हें पेशेवर कैंपों में संगठित कर दिया गया। प्रत्येक कैंप के मुनाफे को सार्वजनिक कोष में जमा किया जाता था। दिव्य शासक से लेकर किसी सैनिक या असैनिक अधिकारी तक को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। पृष्ठ संख्या 72, भूमि प्रणाली और समाजवाद, लैंड सिस्टम एंड सोशियलिज्म। थाइपिंगो ने एक विशेष प्रकार की आर्थिक प्रणाली लागू की जिसे पुरातन समाजवाद, प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कहा जाता है। अपनी भूमि प्रणाली के अंतर्गत थाइपिंगो ने निजी संपत्ति को समाप्त करके भूमि का बंटवारा समान रूप से राष्ट्र के सभी लोगों के बीच किया। जहाँ जहाँ पर थाइपिंग सेना आई वहीं उसने पुराने सरकारी पत्रों, दस्तावेजों, कर रिकॉर्डों और रसीदों को जलाकर नष्ट कर दिया। चावल उत्पादन करने की क्षमता के आधार पर भूमि को 9 भागों में विभाजित किया और उसे समान रूप से लोगों के बीच बांट दिया गया। भूमि वितरण का मापदंड परिवारों के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता था। जितने ज़्यादा सदस्य उतने ही अधिक भूमि। अगर परिवार में 6 सदस्य होते थे तो 3 को अच्छी और 3 को खराब भूमि दी जाती थी। इस प्रकार अच्छी और खराब भूमि को एक सूत्र में बांधकर न केवल उत्पादन की वृद्धि का प्रयत्न किया गया बल्कि उत्पादन के बंटवारे का भी। इस प्रकार कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य भूमि का राष्ट्रीयकरण और लोगों में समानता विकसित करना था। इस नीति में शोषित गरीबों को सबसे अधिक लाभ पहुंचा, क्योंकि पहले वह कुलीन वर्गों और कर अधिकारियों के निरंकुश और भ्रष्ट तरीकों के शिकार होते थे। इसका उद्देश्य एक नए राष्ट्र या फिर नए विश्व का निर्माण करना था। स्पष्ट है कि हुंग सियो छुआन एक आर्थिक क्रांति लाना चाहते थे। इस पुरातन समाजवाद का स्रोत ईसाई विचार एवं चीन के एक विश्व आधारित दर्शन शास्त्र का मिश्रण था। इसमें साम्राज्य को एक बड़े परिवार के रूप में देखा गया। थाइपिंगो की धारणा कि सब कुछ ईश्वर का है न केवल जो उली ग्रंथ पर ही आधारित थी, बल्कि उस प्राचीन वैचारिक प्रणाली से भी प्रभावित थी जिसमें कृषि उपयुक्त भूमि को 8 परिवारों के बीच समान रूप में बांटकर मध्य हिस्से में केवल सरकार को देने के लिए उत्पादन किया जाता था। हुग ने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन चीन में लोगों ने प्राकृतिक साधनों का समान रूप से प्रयोग किया और वैसे ही मिलकर विपदाओं को झेला। इसलिए यह कहना उचित होगा कि हुंग पुरातन चीन के विचारों से ज्यादा प्रभावित थे, न कि इंजील से। पृष्ठ संख्या 73। सैन्य संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। थाइपिंग सेना एक विशेष और व्यवस्थित ढंग से संगठित थी। सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक सेना 5 डिवीजनों में विभाजित थी। प्रत्येक डिवीजन 5 ब्रिगेडों में और प्रत्येक ब्रिगेड 5 कंपनियों को, प्रत्येक कंपनी 5 पलटनों को, प्रत्येक पलटन 5 दस्तों को और प्रत्येक दस्ता 5 सैनिकों को नियंत्रित करता था। लेकिन व्यवहारिक तौर पर प्रत्येक सेना में सैनिकों की संख्या कम होती थी। विधिवत सेना के अलावा थाइफिंगो के पास 4 सहायक सेना भी थी। सैद्धांतिक रूप में सभी सेनाओं का संगठन एक जैसा था। केवल स्त्रियों की बटालियन में डिवीजन और ब्रिगेड कमांडर नहीं होते थे। अधिकारियों की सूची और योग्यता का पूरा ब्यौरा रखा जाता था। शांति काल में सैन्य प्रशिक्षण बड़े विधिवत और नियमित ढंग से दिया जाता था और विश्राम अवधि के समय ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर प्रवचन दिए जाते थे। यह प्रवचन युद्ध के समय में भी दिए जाते थे। 10 दिव्य प्रतिबोधों 10 हिवेनली कमांडमेंट्स का कड़ाई से पालन किया जाता था तथा अवहेलना का अर्थ था कड़ी सजा। सैनिकों और अधिकारियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं रखा गया था। थाइफिंग सेना अनुशासित, संगठित व शक्तिशाली कृषकों की सेना थी, इसलिए इस सेना ने आम जनता को अधिक कष्ट नहीं दिया था। युद्ध के समय उनका ध्यान सरकारी भवनों को जलाने, मांचुओं, कुलीन वर्गों, उनके सेवकों व समर्थकों को मारने पर होता था। अतः थाइफिंग आम लोगों में काफी प्रसिद्ध थे। थाइफिंग विचारधारा का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए कुछ विद्वानों ने यह संकेत किया कि वैसे तो यह प्रभावशाली और आकर्षक थी, लेकिन चूंकि इसकी नींव आराम कुर्सी पर बैठे एक विद्वान ने की थी, इसलिए व्यवहारिक रूप से इसे ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था। भूमि के एक समान बंटवारे से पहले न तो कोई जन गन्ना और न ही जप्ती व राष्ट्रीयकरण की विधि का वर्णन किया गया था, क्योंकि एक बार दिए जाने पर भूमि निजी संपत्ति बन जाती थी और मृत्यु के बाद न लौटाए जाने पर चीन की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में भूमि कम होती गई और थाइफिंग सरकार के पास देने के लिए कोई भूमि नहीं रही। सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक विपदाओं के समय अन्न भंडारण की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं की गई थी। इस आंदोलन की गैर रूढ़िवादी और स्थानीय धर्म विरोधी विचारधारा उसके नेतृत्व से जुड़ी थी। पहले नेतृत्व का विकास दक्षिणी चीन के हक्का लोगों में विकसित हुआ। ये लोग बहुत पहले यहाँ पर आकर बसे थे, लेकिन प्रांतीय परंपराओं को नहीं अपना सके थे। पॉल कुहन कहते हैं कि शुरू के ज्यादातर थाइफिंग नेता ईसाई धर्म का अनुसरण इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे कन्फ्यूशियस समाज में प्रवेश पाने में असफल रहे थे। मोस्ट ऑफ द अर्ली थाइफिंग लीडर्स रिसोर्टेड टू क्रिश्चियनिटी बिकॉज दे फेल्ड टू गेट एडमिटेंस इन टू कन्फ्यूशियन सोसाइटी।